नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि पर देहरादून में उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वन संरक्षण गढ़वाल आकाश कुमार वर्मा ने रुद्रप्रयाग में मानव वन्य जीव संघर्ष और सुरक्षात्मक उपायों को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक ली। नैनीताल जिले के रामनगर में कोसी नदी के किनारे अवैध बस्ती से अतिक्रमण हटाया गया, एनजीटी के निर्देश पर प्रशासन ने कार्रवाई की। और हरिद्वार में नशा मुक्त अभियान के तहत बहुद्देश्य विधिक सेवा व जागरूकता शिविर का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के कनक चौक स्थित पार्क में देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने जनरल रावत के अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च समर्पण को स्मरण करते हुए उन्हें उत्तराखंड और देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत का जीवन देश भक्ति, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणादायक मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सैनिकों और नागरिकों के साथ 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। वन संरक्षण गढ़वाल आकाश कुमार वर्मा ने रुद्रप्रयाग में मानव वन्य जीव संघर्ष और सुरक्षात्मक उपायों को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक ली। समीक्षा में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं, घटनास्थलों पर कार्मिकों की तैनाती, संसाधनों की उपलब्धता, आवश्यकता, जागरूकता और सुरक्षा के प्रति जनसंवाद को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद वन संरक्षण गढ़वाल ने बताया कि इन दिनों मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं की रोकथाम के लिए दीर्घकालिक प्रभावी योजना बनाई जा रही है।
अभी कुछ दिनों से जो ये आ रहा था कि रुद्रप्रयाग में भी घटनाओं में धीरे धीरे एक वृद्धि आ रही है, तो ऐसे में जो हमारे फील्ड कर्मिक हैं वो अपने लगातार काम में लगे हैं, तो उनका मनोबल भी बना रहे। उसके बाद वो जो काम कर रहे हैं उसमें किसी तरह की कमी है, उसमें किसी तरह की उनकी हमसे अपेक्षा है, उसको भी हम लोग आगे ले जाए, उसका निराकरण करें। और उसके बाद जहां जहां घटना के क्षेत्र हैं उन सबका निरीक्षण करके उसके संबंध में एक दीर्घकालिक योजना, अभी के जो अनुभव हैं और आने वाली जो परिस्थितियां दिखती हैं उनके अनुसार एक दीर्घकालिक योजना जो कि इम्पैक्टफुल हो, असरदार हो और लोगों के सहयोग से हो, उसके बारे में प्लानिंग चल रही थी।
रुद्रप्रयाग के प्रभावी वनाधिकारी रजत सुमन ने बताया कि विभाग द्वारा आधुनिक उपकरणों की खरीद की जा रही है, जिससे जंगली जानवरों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा सके। उन्होंने बताया कि आधुनिक उपकरणों के माध्यम से जंगली जानवरों की चहलकदमी को रियल टाइम ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे दुर्घटनाओं और हमलों में प्रभावी कमी लाने में सहायता मिलेगी।
इसके अंतर्गत ये था कि हाल ही में हमारी इससे रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें ये आया था कि हम लोगों को अपने खुद को हमें सफिशिएंटली इक्विप करके रखना था एंड इसको बढ़ाने के लिए। एंड ये हमारा अनुमानित था कि ऐसा हो सकता है आने वाले समय में भी कि ऐसी घटनाओं का क्रम बढ़ जाएगा, तो एक प्रपोजल हमारी एंड से यहाँ से गया था फॉरेस्ट वन विभाग की तरफ से एंड उसी दिन उसी मीटिंग में यह प्रपोजल अप्रूव भी हो गया था। इससे जो रेलिवेंट प्रोक्योरमेंट्स हैं, जैसे हमारे एनआईडीज हो गए, फॉक्स लाइट्स हो गई, वाई पोल्स हो गए और भी जो अन्य हमारी रेस्क्यू टीम्स एंड क्विक रिस्पांस टीम को जो इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, तो पार्शियल रूप पे हमें वो प्राप्त भी हो गया एंड काफी सामान है जो मोबिलाइज हो गया है, हाल ही में हमें पहुंचने वाला है।
देहरादून स्थित एसटीआरएफ वाहिनी में युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का 6वें बैच का समापन हुआ। इस अवसर पर 68 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में युवाओं को दक्ष बनाकर समुदाय सेवा में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में संचालित इस प्रशिक्षण में सभी प्रशिक्षुओं नेहरू युवा केंद्र से चयनित युवा स्वयं सेवक थे।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
नैनीताल जिले की रामनगर पालिका क्षेत्र से सटी कोसी नदी के किनारे अवैध तरीके से बसाई गई पुछड़ी बस्ती में अतिक्रमण हटाया गया। यहां पर रिजर्व फॉरेस्ट की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के निर्देश पर कोसी नदी किनारे के अतिक्रमण को हटाने के लिए पिछले कई महीनों से कवायद की जा रही थी। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की इस भूमि पर लंबे समय से लोग अवैध खेती कर रहे थे। विभाग ने पहले भी इन कब्जों को चिन्हित किया था, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने बताया कि पहले चरण में नगर पालिका को दी गई ट्रंचिंग ग्राउंड की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। उन्होंने कहा कि आरक्षित वन भूमि पर बाहर से आए लोगों ने अवैध बसावट कर ली थी, जिन्हें वन विभाग हटा रहा है।
जनपद नैनीताल में संयुक्त कार्रवाई हुआ है। रामनगर पुछड़ी क्षेत्र में तराई पश्चिमी वन प्रभाग में अंतर्गत जो है नदी और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में कई वर्षों से इलीगल तरीके से अवैध अतिक्रमण जमे हुए थे। अवैध रूप से विभिन्न स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। इसको डीएफओ तराई वेस्ट द्वारा नियमानुसार वन विभाग द्वारा अतिक्रमण को हटाने का नोटिस तामील कर दी गई थी। संयुक्त टीम्स द्वारा जिसमें पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और वन विभाग, सभी विभागों द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए रामनगर पुछड़ी क्षेत्र में फर्स्ट फेज में भारी मात्रा में हमने अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है और उसको जमींदोज किया गया है।
उत्तराखंड राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण नैनीताल और जिला सेवा विधिक प्राधिकरण हरिद्वार के संयुक्त तत्वाधान में हरिद्वार में नशा मुक्त अभियान के तहत बहुउद्देश्य विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेंद्र और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पूरे देश में नशीली दवाओं की चुनौतियों का पैमाना हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं से अपील की कि छात्रों के बीच जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू करें और ऐसी टीमें बनाएं जो समाज के बीच जागरूकता फैलाएं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने कहा कि कानूनी सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने, समाज में न्याय सुलभता स्थापित करने और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने की जो पहल उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निरंतर की जा रही है और ये शिविर उसी सतत प्रयास का एक और मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज को सशक्त बनाना, कमजोर वर्गों को सहयोग देना और हर नागरिक को एक सुरक्षित, स्वस्थ और न्यायपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन प्रदान करना है। दुग्ध संघ लालकुआ, उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल के अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से 14 वर्ष बाद पदोन्नति मिलने पर राजधानी देहरादून में धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुग्ध एवं डेयरी विकास मंत्री सौरव बहुगुणा को सम्मानित किया गया। श्री बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादक किसानों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों की समृद्धि और प्रदेश का सशक्तिकरण सरकार का लक्ष्य है, जिसके लिए निरंतर सफल प्रयास किए जा रहे हैं।
बधाई दूंगा हमारे दुग्ध संघ के समस्त कर्मचारियों को और अधिकारियों को कि उनके बहुत लंबे समय से, जैसे आपने बोला है, 2013 से 2012 से कुछ की 17 साल से, दुग्ध संघों की 17 साल से पदोन्नति का रास्ता बंद था। इस सरकार में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी लगातार कोशिश यही रही है कि जो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, दुग्ध संघों को आगे बढ़ाने में, किसान भाइयों ने, हमारे गन्ना चीनी मिलों के मृतक आश्रितों ने योगदान दिया उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, उनकी अगर कोई समस्याएं तो उनका हल होना चाहिए।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि पर देहरादून में उनकी प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वन संरक्षण गढ़वाल आकाश कुमार वर्मा ने रुद्रप्रयाग में मानव वन्यजीव संघर्ष और सुरक्षात्मक उपायों को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक ली। नैनीताल जिले के रामनगर में कोसी नदी के किनारे अवैध बस्ती से अतिक्रमण हटाया गया। एनजीटी के निर्देश पर प्रशासन ने कार्रवाई की और हरिद्वार में नशा मुक्त अभियान के तहत बहुउद्देश्य विधिक सेवा व जागरूकता शिविर का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।